सड़क से लेकर संसद तक की सियासत वाला शो एक बार फिर से आप देख रहे हैं यूपी बिहार के दिल से। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एसोसिएट एडिटर सोनू कनौजिया। गुजरात के साबरकांठा में एक 14 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ और इस मामले में यूपी बिहार के लोगों की पिटाई शुरू हो गई। उन्हें गुजरात से भगाने पर मजबूर किया गया और यही वजह है कि 3 दिनों के अंदर 80,000 से अधिक जो यूपी बिहार के रहने वाले लोग थे, जो परिवार थे, उन्होंने पलायन किया और वे अपने अपने राज्यों में पहुंच गए। लेकिन ये स्थिति किसके कहने पर हुई, किसके इशारे पर हुई और कौन है इसके पीछे का असली जिम्मेदार, आज इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सोनू जी मौजूद होंगे। उनसे हम बात करेंगे कि इस तरह की राजनीति करके हमारे नेताओं को क्या मिलता है, क्योंकि बच्ची के साथ रेप हुआ यह गलत है और इस मामले में जो आरोपी है उसे सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसे सजा देने का जो काम है वो कोर्ट करने वाला है। कानून क्यों अपने हाथों में ली गई और कानून के बहाने राजनीति किसने की, सोनू जी हमारे साथ हैं। सोनू जी, किसने कानून हाथों में लिया और किसने की है राजनीति?
देखिए, मुझे लगता है कि जब ऐसे कुछ मुद्दे आते हैं जो काफ़ी संवेदनशील होते हैं तो जो लोकल लीडर्स होते हैं उनकी एक भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम होती है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ठाकुर समुदाय के जो लोकल लीडर्स थे, हो सकता है उन्होंने जोश में आके कुछ कर दिया। तो जो लोकल लीडरशिप होती है उस पर ध्यान देना ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक पहला पॉइंट होता है जहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल की जा सकती है। लेकिन अगर वहाँ पर ही अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं और जो उत्तर प्रदेश, माफ़ करिए, गुजरात में जो हो रहा है उसका उतना बड़ा एक हादसा हो सकता है। अब एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है तो उस मामले की गंभीरता देखनी चाहिए। आप सऊदी अरबिया या फिर इराक विराक में नहीं है जहां पर आप खुद ही फैसला सुनाने लग गए भीड़ ने और खुद ने ही सजा दे दी। हमारे देश में कानून है, उस कानून के तहत उस आरोपी को सजा होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस एक आरोपी की वजह से आप पूरे समुदाय को उस तरह से देखेंगे और फिर उनके ऊपर हमला करेंगे। तो मुझे लगता है ये गलत है, इस तरह की मानसिकता जो है वो बदलने की जरूरत है। इसके अलावा अगर बात करें तो उस समुदाय के जो लीडर हैं उनको भी अपनी जो भाषा है उस पर कंट्रोल करना चाहिए, किस तरह से स्थिति को सामान्य रखी जाएगी उस पर ध्यान देना चाहिए। अब अल्पेश ठाकुर का नाम सामने आ रहा है इस पूरे मामले पर, अब इस कितना सच्चा है कितना नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ आप अल्पेश ठाकुर के जो पुराने बयान हैं उसको देख लें तो उससे पता चलता है कि किस तरह से अल्पेश ठाकुर इस पूरे मामले में एक तरह से जहर घोलने की बात कर रहे हैं। अब एक समुदाय को अलग कर रहे हैं, दूसरे समुदाय को अलग कर रहे हैं, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो जो आज स्थिति है वैसी स्थिति हमें हर राज्य में देखने मिलेगी। तो मुझे लगता है कि जो लोकल लीडरशिप है उस पर ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। कोई भी अगर देखा जाए तो इतना एग्रेसिव बंदा नहीं चाहिए जो आपके लोकल लीडरशिप का नेतृत्व कर सके और इस तरह के हंगामे को अंजाम दे। तो मुझे लगता है कि एक विधायक के अलावा जो उसके नीचे के जो लोग होते हैं उन पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो सामाजिक संगठना होती है, अब जैसे ठाकुरों की बात करें, ठाकुरों का समुदाय हो गया या फिर यूपी बिहार वालों का समुदाय हो गया, उसमें ऐसे लोग होने चाहिए जो थोड़ा सेंसिबल हो, जो चीज़ों को सही गलत समझ सके और किस तरह से इंसाफ मांगना है और किस तरह से कानूनी कार्रवाई करनी है उस पर, उस तरह के ऑप्शंस पर विचार करने वाला कोई चाहिए। आप किसी को भी अगर बना देंगे तो जाहिर सी बात है वो जाएंगे, हंगामा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, सरकारी संपत्ति का नुकसान करेंगे और किसी एक इंसान के वजह से पूरे के पूरे समुदाय को आप ब्लेम कर देंगे। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आपको जो लोकल लीडरशिप होती है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
देखिए, आरोप तो यह भी लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर, क्योंकि बीजेपी ने जमकर रोटी सेकी है इन सब के बीच में। आरोप कांग्रेस के विधायक अल्पेश ठाकुर उनके ऊपर लगे, उनकी जो ठाकुर सेना है उस पर लगे। तो ये भी गुजरात से यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जाके उत्तर भारतीयों के साथ गलत हरकत किया, बीजेपी से जुड़े लोगों ने जाकर उनके साथ मारपिटाई की ताकि इसका ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फूट सके। क्या लगता है, बीजेपी ने भी रोटी सेकी होगी?
देखिए अब इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रही है। उस बच्ची के इंसाफ के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट वहां पर कुछ सोच रही है, ना तो कांग्रेस सोच रही है, ना तो वहां के विधायक सोच रहे हैं, और ना ही जो दूसरे स्टेट के लीडर्स हैं वो भी नहीं सोच रहे हैं। अब जैसे वो हादसा हुआ, उत्तर भारत और बिहार के लोग जाने लग गए, अपने अपने बिहार चले गए और कोई उत्तर प्रदेश चला गया। अब मामले की आग वहां पर एक तरह से खत्म हो सकती थी, लेकिन मुंबई में संजय निरुपम ने एक स्टेटमेंट दे दिया। संजय निरुपम अपने स्टेटमेंट पे उन्होंने बोल दिया कि यूपी बिहार वाले अगर काम करना बंद कर दे तो मुंबई बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से स्टेटमेंट आया कि आप बंद करके दिखाएं,
राज ठाकरे की पार्टी।
हाँ, राज ठाकरे की पार्टी। उसके बाद शिवसेना की तरफ से यह आया कि कांग्रेस हमेशा इस तरह की राजनीति करती है, लोगों को तोड़ने का काम करती है। अल्पेश ठाकुर को लेकर शिवसेना ने बयान दिया। बिहार के मंत्री ने बोल दिया कि आप बिहार को गलत नजर से ना देखें। तो इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई और कुछ नहीं हुई। और स्टेट गवर्नमेंट चाहती तो ये डैमेज कंट्रोल कर सकती थी। स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक इस तरह का रोल निभाया, बस वेट एंड वॉच किया। लोगों का पलायन हो रहा था, आपने जाने दिया। जब मुद्दा गर्मा गया तब आप हरकत में, जब आपके डीजी और आपके पुलिस कमिश्नर जाकर उत्तर भारतीय जो लोग हैं गुजरात में उनसे मिल रहे हैं और उनको ये आश्वासन दे रहे हैं कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तो ये आपने जो इतना लेट कर दिया, आपके लेट एक्शन के वजह से ये जो इतना हंगामा हो गया। और बाकी जो अपोजिशन है यार, उसको तो मौका मिल जाएगा राजनीति के लिए, तो क्यों नहीं मौका छोड़ेगी। अब एक और स्टेटमेंट हमने राहुल गांधी की तरफ से देख लिया। अब ये मामला है एक बच्ची की, 14 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार का। राहुल गांधी ने ये कह दिया ट्वीट करके कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी की वजह से गरीबी बढ़ रही है और इसके वजह से गुजरात के उत्तर भारतीय जो है वो पलायन कर रहे हैं। अब बताइए मामला कहां पर और राहुल गांधी कहां पर लेके जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा राजनीतिक अगर देखा जाए तो खेल हो रहा है और कुछ नहीं। कोई मतलब बच्ची के इंसाफ के बारे में कोई नहीं सोच रहा, ना तो राहुल गांधी सोच रहे, ना तो स्टेट गवर्नमेंट सोच रही है, ना तो अल्पेश ठाकुर सोच रहे, ना तो नीतीश कुमार सोच रहे, ना संजय निरुपम सोच रहे, कोई नहीं सोच रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी किस तरह से सेकी जानी चाहिए और किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अपना फायदा होना चाहिए, इस पर जो है लोगों का ध्यान है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इतने दिनों में जो हुआ मुझे लगता है कि ये उसी का एग्जांपल है। लोग पलायन कर रहे हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चुप थी, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी एक तरह से फेलियर है। लोगों पर हमला किया जा रहा था फिर भी स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल मशीनरी होती है वो भी चुप रही, तो लोकल मशीनरी का भी फेलियर है, पुलिस डिपार्टमेंट का फेलियर है। मुझे लगता है कि अब डैमेज कंट्रोल करने से कुछ फायदा नहीं, अब सबके असली चेहरे सामने आ चुके हैं।
सुनो जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए कांग्रेस तो विपक्ष में है, वो तो आरोप लगाएगी, जाहिर सी बात है, लेकिन सवाल यहाँ पर बीजेपी का होता है, बीजेपी से जुड़े जो साथी दल है उन पर देखिए सवाल उठता है।
जी,
योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमला होता है वो कोई ठोस जो अगर कहें तो स्टेटमेंट कोई सामने उनका नहीं आता, वे कहते हैं कि अफवाहों पर विश्वास तभी ना करें, सब कुछ ठीक है, मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी से मैंने बात कर ली है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथी दल जेडीयू, वे भी इसी तरह का स्टेटमेंट देते नजर आते हैं। चार साढ़े चार साल का मौका हो गया, केंद्र सरकार बीजेपी की है, बाकी इन राज्यों में अगर कहें तो बीजेपी की भी गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट में। इतने सालों में चाहे यूपी हो चाहे बिहार, अभी तक रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए गए, जिस वजह से जो लोग हैं उनको दूसरे राज्यों में जाना चाहिए।
जी,
वहां पर जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो यूपी बिहार के जो लोग हैं उनको बुरी तरह से पीटा जाता है, उनको भगाया जाता है जैसे वो उनका देश ही ना हो।
जी,
और दूसरी चीज में लगे हाथ आपसे इसी पूछना चाहता हूँ कि पीएम मोदी तो खुद यूपी से सांसद हैं, वो तो खुद बनारस से सांसद हैं, ये सारे मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सभी लोग यूपी और बिहार की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे 2019 में?
देखिए जाहिर सी बात है, ये जो है ये एक बहुत बड़ा फेलियर है हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स के, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के, जो कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देश का लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा स्टेट है। और मुझे अगर मेरी जानकारी सही है तो देश के मैक्सिमम जो प्रधानमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। तो ऐसा स्टेट जहाँ पर इतने सारे लीडर हैं, आज वो प्रगति क्यों नहीं कर रहा है?
बिल्कुल,
एक तो पहली बात तो यह है कि कभी किसी ने ध्यान दिया ही नहीं, चाहे वो यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे मायावती की गवर्नमेंट हो, चाहे अखिलेश यादव की गवर्नमेंट हो, या बिहार में लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट हो, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, उन्होंने कहीं भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं की, डेवलपमेंट की बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उसमें ही लोगों को बहकाए रखा गया और लोगों को सिर्फ और सिर्फ लोगों से वोट मांगा। डेवलपमेंट के बारे में किसी ने नहीं सोचा, उत्तर प्रदेश में किस तरह से नई नई कंपनीज आएगी इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, बिहार में किस तरह से नए नए प्लांट्स लगेंगे इसके बारे में इतना कोई नहीं सोचा गया। और दूसरी बात यह है कि लोगों की मानसिकता भी नहीं बदल पाई है सरकार। देखिए मुंबई में अगर देखा जाए तो मुंबई के लोगों के अंदर एक मानसिकता है, डेवलपमेंट की मानसिकता है, बिहार के लोगों में वो पैदा करना बहुत मुश्किल हो गया, सरकार कुछ कर ही नहीं पाई। अगर आप लोगों के अंदर वो फीलिंग ला दें कि हम आपकी मदद करेंगे, आप आगे बढ़िए, तब जाके लोग भी कुछ करेंगे। वहां पर लोगों ने, लोगों के साथ भी गवर्नमेंट ने अपना तालमेल अच्छे से नहीं बैठाया, तो ये गवर्नमेंट का इतना बड़ा फेलियर है कि ना तो आप एजुकेशन सिस्टम वहां पर ठीक कर सके, ना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर कर सके, ना तो लोगों को टेक्नोलॉजी से आप आमना सामना नहीं करवाया। तो ऐसे कई सारे फेलियर हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार में आज भी हमें देखने मिलते हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है ये जो स्टेट है ये और भी पिछड़े होते जाएंगे। इतने बड़े राज्य हैं, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतने बड़ा एरिया है, आप अगर देखा जाए तो वहां पर आप खेती अगर मॉडर्न तरीके से करना शुरू करवा दें तो लोगों का, लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी। इतनी बड़ी जगह है, वहां पर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो भी आपको अच्छी खासी अगर देखा जाए तो जगह मिल जाएगी। इसके अलावा नए नए कंपनीज जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके प्लांट्स इधर लगवाइए, उसमें आपको फायदा है। मैन पावर है लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत सी कमी है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमी है तो वो इच्छा शक्ति की है गवर्नमेंट्स की। अगर गवर्नमेंट अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति होगी तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार भी पीछे नहीं रहेगा, वहाँ पर भी डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये गवर्नमेंट को आगे आकर देखना चाहिए, गवर्नमेंट को लोगों को जात पात पर वोट मांगने से अच्छा है लोगों से डेवलपमेंट पर वोट मांगे और अपना जो काम किया है वो काम का ब्यौरा लेकर लोगों के सामने जाए, ताकि लोग भी ये समझ सके कि कुछ काम हो रहा है। अब देखिए मुंबई में मेट्रो बनी है तो मुंबई में मेट्रो का फायदा कितना आ रहा है, उत्तर प्रदेश में मेट्रो बनी हुई है उस मेट्रो से कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं ये बताइए लखनऊ में, क्योंकि लोगों को यहाँ से वहां जाने के लिए कोई तो वजह हो ना, अब वजह नहीं दोगे तो फिर ट्रैवल कौन करेगा,
बिल्कुल
तो वजह ही नहीं है लोगों के पास, आप कुछ दे ही नहीं पा रहे,
यानी रोजगार के अवसर नहीं पैदा किए गए अभी तक। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार की जो जनता के भावनाओं के साथ, उनके वोटों के साथ और उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ ये राजनेता करते नजर आ रहे हैं। 2019 में चुनाव है और उसी चुनाव के बीच में फिर से एक बार दस्तक दी जाएगी आपके दरवाजे पर, फिर से आपके साथ वोट मांगा जाएगा और जब सरकार बन जाएगी तो फिर आपके लिए रोजगार के अवसर नहीं पैदा किए जाएंगे, फिर आपको महाराष्ट्र, गुजरात या दूसरे राज्यों में आश्रित होना पड़ेगा। और जब आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ से जुड़े जो राजनेता हैं, जो लोकल लीडर्स हैं, आपके साथ हाथापाई करेंगे और किसी न किसी मुद्दे को बहाना बनाकर आपको फिर एक बार खदेड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह के जो राजनीति करते हैं, ऐसी राजनीति को आपको नकारना होगा, आपको जवाब मांगना होगा किसने कितना डेवलपमेंट किया है, किसने कितना विकास किया है, ताकि रोजगार के अवसर बने रहें, लोग अपनी जिंदगी खुशहाली से अपने राज्य में या कहें अपने देश में वे साफ तौर पर गुजार सके। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मसले पर राजनीति लगातार होती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, कौन हो सकता है इसके पीछे का जिम्मेदार, क्या होगी देश में आने वाले समय में इन सारे मसलों पर देश की एक अलग तस्वीर, जो भी कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। नमस्कार।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।